नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं त्रिभुवनशिरसे हरये भवभयगभादुनिगदे प्रणौं सिद्धे जीवठाणे समलिनगुणचूलियं ओच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ छठी पुस्तक जो चूलिका का अधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 22 पर आ गए हैं। यहाँ अभी श्रुत ज्ञान की चर्चा हो रही है। ज्ञानावरणीय कर्म का यहाँ विषय चल रहा है, प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों का व्याख्यान यहाँ चलेगा। तो उसमें मूल प्रकृतियों देखने के बाद हम उत्तर प्रकृतियाँ देख रहे हैं। तो उसमें श्रुत ज्ञानावरण की बात उठाई है, तो उसमें श्रुत ज्ञान क्या है उसकी चर्चा चल रही है इसमें। तो उसमें हम कल मति ज्ञान जो उसकी 336 भेद देखे थे, अब श्रुत ज्ञान की बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर्याय नामक जो श्रुत ज्ञान है उसकी चर्चा करते हुए पहले बताया कि पर्याय नाम का मति ज्ञान का भेद है, जो अक्षर ज्ञान जो केवल ज्ञान उसका अनंत वा भाव है, ये बात वहाँ पहले उठाई। और उस मति ज्ञान पूर्वक जो श्रुत ज्ञान वहाँ होगा उसके संबंध में उसको भी उपचार से पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान कहने में आता है। अब ये श्रुत ज्ञान के उन्होंने अलग अलग भेद बताए हैं, 20 भेद बताए हैं। तो उसमें जो हम नाम लेंगे उसके आगे समास ऐसा लिखेंगे तो बीच वाले मध्यम भेद हो जाएंगे। तो पर्याय, फिर अक्षर, और इन दोनों के बीच में पर्याय समास, अक्षर और पद के बीच में अक्षर समास, पद और संघात के बीच में पद समास, संघात और वो आगे जो अनुयोग क्या है, हाँ, प्रतिपत्ति होगी, प्रतिपत्ति होगी उसके पश्चात प्रतिपत्ति, तो उसमें संघात समास, फिर प्रतिपत्ति समास, और फिर अगला वाला अनुयोग। इस तरह से ऐसे इसके 20 भेद है, श्रुत ज्ञान के 20 भेद है। तो उसमें सबसे पहले जो सबसे हीन जो ज्ञान का उघाड़ है श्रुत ज्ञान संबंधी, तो उसको पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो पर्याय नाम का ज्ञान और उससे अगला वाला जो अनंत अनंत गुणा जो है वो अक्षर नाम का एक ज्ञान है, और बीच में पर्याय समास नाम के भेद होते हैं। तो ये भेद कितने हैं उसकी चर्चा कल उठाई थी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें जो षड वृद्धि के स्थान है उसको कहते हैं षट स्थान पतित वृद्धि, शॉर्ट में षड वृद्धि कह दिया। तो ये 6 बार वृद्धि नहीं है, 6 प्रकार से वृद्धि है, और उसके तो असंख्यात असंख्यात स्थान होते हैं। एक बार षड वृद्धि के स्थान हो गए तो उसमें भी असंख्यात असंख्यात ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं उसमें। तो उसकी चर्चा उन्होंने, ये जो षट स्थान पतित वृद्धि क्या बात है उसको हम दोबारा देखते, कल हमने तो पढ़ा था खाली। ये 6 नाम कौन कौन से याद है आपको वृद्धि के, ये जो 6 नाम हमने कल देखे थे, पहले में पहले अनंत भाग वृद्धि, अनंत वा भाग करके उसमें मिला देना, ये अनंत भाग वृद्धि हो गई, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि, और अनंत गुणा वृद्धि। एक बार अनंत गुणा वृद्धि होगी लास्ट में, तो एक वो अनंत गुणा वृद्धि होने तक बीच में कितने स्थान होते हैं इसकी यहाँ चर्चा है। तो पहले हम देखते हैं, उसको टेबल के द्वारा भी समझाया है, और जो काल्पनिक फिगर्स होती है जिसको हम अंक संदृष्टि कहते हैं उसके द्वारा भी समझाया है, तो उसकी बात हम देखेंगे यहाँ। देखो यहाँ क्या लिखा है उसको पहले पढ़ते हैं फिर दोबारा उसको समझेंगे। ऊपर से चौथी लाइन, ये 22 पृष्ठ पर के आप में पृष्ठ संख्या वही है कि अलग अलग है? वही, हाँ ठीक है। देखो, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन छह वृद्धियों के, यहाँ वृद्धि का अपना प्रकरण चल रहा है, क्योंकि हम सबसे कम ज्ञान की ओर से बढ़ते हुए ज्ञान के अलग अलग भेद देख रहे हैं, इसलिए यहाँ तो वृद्धि की बात करेंगे, हानि की बात नहीं करेंगे। हम जब ये षट्स्थान वृद्धि और हानि भी होती है कहीं कहीं, तो यहाँ तो हानि की ओर से हम नहीं देख रहे, हम तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ वृद्धि के स्थान कहेंगे। स्थान ने अलग अलग भेद, अलग अलग डिग्री वाले जितने ज्ञान होंगे उतने भेदों को यहाँ स्थान कहा है। तो ये जो छह वृद्धियों के समुदायात्मक, यह एक षड वृद्धि होती है, यानी एक बार ये षट स्थान पतित वृद्धि होती है तो उसमें कितने स्थान हो सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमने पहले में पहले स्थान देखा था अनंत भाग वृद्धि का, कोई एक विशिष्ट संख्या है अनंत में है वो, क्योंकि अनंत का जिसको भाग जाता है वो तो संख्या मूल में अनंत होनी चाहिए, और वो भी बड़ा अनंत है, उसे किसी यथा योग्य अन्य छोटे अनंत से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो मूल राशि में मिला देना, उसको कहते हैं अनंत भाग वृद्धि, यानी अनंत में भाग से बढ़ गया ना आगे वाला भेद, पर्याय नाम का जो भेद है उससे उसके अगले वाला जो भेद है वो कितने अविभाग प्रतिच्छेदों से ज्यादा है। ये जो अनंत अनंत क्या है, ये अनंत जिससे गुणा करना भाग देना, ये क्या बात है? तो मूल में जो राशि लेनी है वो तो पर्याय नाम का जो श्रुत ज्ञान है उसमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं जो अनंत है उसकी संख्या हम रखेंगे पहले में पहले, वो मूल राशि हमारी, उसको दूसरे यथायोग्य अनंत से भाग देंगे जो संख्या आएगी वो मूल राशि में मिला देंगे, तो उसको कहते हैं वो अनंत भाग वृद्धि का एक स्थान हुआ। अब उसके अगला वाला भेद क्या है, फिर दोबारा उसको अनंत से भाग देना अगले वाली संख्या को, हाँ मिलाने के बाद जो आई है उसको फिर दोबारा अनंत से भाग देना, जो संख्या आएगी उसी में मिला देना, वो दूसरा भेद हुआ। फिर तीसरी बार फिर अनंत का भाग देना, उसमें मिला देना, ये जो नई नई राशि आएगी उसका अनंत वा भाग करके उसी में वो राशि मिलाते जाना, इस तरह से असंख्यात बार इसी तरह से जाना, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, कितने बार करना? तो असंख्यात बार करना। तो आप कहेंगे असंख्यात तो बहुत प्रकार के हमने सुने आज तक, तो ये सुच्चंगुल का जो असंख्यात वा भाग है, देखो अंगुल को कहाँ रखा था हमने, द्विरूप वर्ग धारा में, आवली तो सेकंड का सैकड़ोवा भाग है, असंख्यात स्थान जाने पर पल्ल्य आता है, तो पल्ल्य कितना बड़ा है हमें मालूम है, क्योंकि उसके असंख्यात वे भाग में असंख्यात करोड़ अबज वर्ष चले जाते, ये पल्ल्य, पल्ल्य को आगे उसका वर्ग 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 असंख्यात बार करो तो जाके सुच्चंगुल आता है। अब ऐसे सुच्चंगुल का यथा योग्य जो असंख्यात वा भाग है वो भी कितना बड़ा होना चाहिए, उतनी बार अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि करते जाएंगे, तब जाके एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, यानी अब यहाँ जो संख्या आएगी उसको अनंत का भाग देने के बदले असंख्यात का भाग देंगे, यानी मूल राशि में अनंत का भाग देके अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि होते होते सुच्चंगुल के असंख्यात वे भाग बार, अभी हम असंख्यात बार कहेंगे, असंख्यात बार ऐसी वृद्धि होते होते एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, यानी अभी अनंत का भाग नहीं देंगे, अभी असंख्यात का भाग देंगे, अभी कौन से असंख्यात का देना है उसकी बात आएगी, तो असंख्यात का भाग दिया, अब जो कोई राशि आई उसको फिर अनंत का भाग देना अभी। असंख्यात वा उतनी बार करना है, हाँ हाँ, उसको भी असंख्यात का भाग देना, असंख्यात का खाली, पहले हम अनंत का भाग देते थे, सुचंगुल के लेवल तक नहीं, कितनी बार हमने एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, 25 बार दिया, लाख बार दिया, तो ऐसे कितने बार देना, असंख्यात बार ये ऐसी बात होने के पश्चात क्या होगा उसकी बात चल रही है। हाँ, ये सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे।
देखो अभी क्या बात हो रही है कि एक बार आपने अनंत भाग, अनंत का भाग दिया, एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, ऐसे कितने बार आप देंगे, तो वो कह रहे हैं कि सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार, तो वो जो कोई उतना समझ ले कि 100 आंकड़ा है सुचंगुल का असंख्यात भाग, 100 बार आपने उसको अनंत भाग वृद्धि कर करके, अभी पहले समझ ले कि 1000 थे, 1000 में हमने 10 का भाग दिया और जो कुछ आया वो उसमें ऐड किया, फिर उसको फिर 10 से भाग दिया, ऐसा करते करते आगे बढ़े, तब वो असंख्यात बार होने के बाद जो कोई संख्या आएगी वो कितने बार ऐड किया उससे असंख्यात भाग हो जाएगा, असंख्य बार होगा ना, तो फिर अभी जो कोई आएगी उसको असंख्यात से अभी भाग देना और उसमें ऐड करना, ऐसा करते करते नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो असंख्यात वे बार हो गया उसके बाद असंख्यात से ही भाग देना है ना उज्ज्वल,
फिर अनंत भाग,
फिर अनंत से देना है, सॉरी वो असंख्यात वह बार हो गया, जो कुछ संख्या आएगी उसको अनंत का भाग देना, फिर ऐड कर देना, फिर अनंत का भाग देना, ऐसा करते करते और दूसरे टाइम जब आएगा वो अभी आगे की बात आपको समझाएंगे।
देखो अभी हम इसको फिर से दोबारा समझेंगे, कषाय मार्गणा में भी ये बात आई थी ना। हमने देखा था ना ये पहला पर्याय समास, उसका अनंतवा भाग उसमें मिला ना, जो संख्या आएगी उसका अनंतवा भाग करके उसी में मिला अगले वाली संख्या में, फिर अनंतवा भाग, ऐसे असंख्यात बार हो गया सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार, तब जाके एक बार असंख्यात का भाग देके जो बड़ी संख्या, अभी असंख्यात से भाग दिए, बड़ी संख्या से भाग दिए अभी, वो उसमें मिला देना संख्या, भाग दिया असंख्यातवा भाग से बढ़ गई वो संख्या, एक बार हुआ ये असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि के बीच में बहुत स्थान, बहुत यानी सुचंगुल के असंख्यात भाग, फिर दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि, हम दूसरे कलर से बताएंगे, ये पीले कलर में दिखाया है वो अनंत भाग वृद्धि, एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर पीले यानी वो अनंत भाग वृद्धि, फिर ये पिंक जो दिखाते हैं वो असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर दोबारा असंख्यात भाग वृद्धि, ये असंख्यात भाग वृद्धि अभी तक 3 बार हुई, ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि भी जब सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार हो जाएगी, तब फिर उसके बाद फिर अनंत भाग वृद्धि, और तब जाके एक बार संख्यात भाग वृद्धि आ जाएगी, संख्यात वे भाग से उसको भाग देना और वो जो संख्या आएगी उसमें मिला देना। अब ये जो पहले से झमेला यहाँ तक देखा, अब ये 2 के बदले हम 3 के बदले 2 ही बार लिखेंगे, जब जब अभी एक फॉर्मूला याद रखना, जब हम 2 बार कोई संख्या लिखेंगे तो उसका अर्थ हुआ सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार। अभी हम शुरू करते हैं, ये हमारा पर्याय समास, पर्याय नाम का ज्ञान है, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, ये पीले में हमने बताया 2 बार, 2 बार बताया उसका अर्थ क्या हुआ सुचंगुल के असंख्यातवे भाग बार, तब जाके अभी हम ये पीला, ये पिंक बता रहे हैं, 2 बार पीला का अर्थ क्या हुआ सुचंगुल के असंख्यातवे भाग बार, अब जाके पिंक हमने 1 बार बताया तो उसका एक बार यानी 1 बार हुआ, फिर ये बीच में जो पीले 2 लाइन करेंगे उसका अर्थ होता है दोबारा वो अनंत भाग वृद्धि सुचंगुल के असंख्यात भाग बार हुई, तब जाके फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई, अब ये असंख्यात भाग वृद्धि 2 पिंक हमको यहाँ दिख रहे हैं ना, 2 लाइन पिंक की, तो 2 का अर्थ क्या हमने लिया था सुचंगुल के असंख्यात भाग बार, बराबर, फिर अनंत भाग वृद्धि के स्थान आ जाएंगे और अब संख्या भाग वृद्धि का एक स्थान आ जाएगा। अब संख्या उसके बाद क्या होगा, फिर अनंत भाग वृद्धि, यानी उसके बाद ये पूरा ही जो है वो रिपीट होगा कि अनंत भाग वृद्धि के दो स्थान लिखेंगे हम, दो पीली लाइन, फिर एक पिंक लाइन, यानी दो दो बार यानी सुचंगुल के असंख्यात विभाग, फिर असंख्यात भाग वृद्धि का एक स्थान, फिर दो पीले लाइन यानी अनंत भाग वृद्धि, फिर दोबारा असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि दो बार लिखी, उसका अर्थ होता है सुचंगुल के असंख्यात विभाग बार, फिर अनंत भाग वृद्धि, और जाके तब अभी हम ब्लू लाइन से बताते हैं संख्यात भाग वृद्धि। अभी हम यहाँ देखते हैं बोर्ड पर संख्यात भाग वृद्धि दो बार आ गई, उसका अर्थ है संख्यात भाग वृद्धि भी सुचंगुल के असंख्यात विभाग बार हो गई। अभी यही प्रोसेस हर बार रिपीट करना, कितने बार वो सुचंगुल के असंख्यात विभाग बार, यानी जब संख्यात भाग वृद्धि भी इसी मेथड से सुचंगुल के असंख्यात विभाग बार हो जाएगी तब क्या होगा, तब ये जितना पूरा प्रोसेस है ना असंख्यात भाग बार का पूरा यहाँ रिपीट होगा, तब जाके एक बार संख्यात गुणा वृद्धि होगी। संख्यात भाग हो चुका ये ब्लू लाइन में, अब संख्यात गुणा का नंबर है, तो संख्यात गुणा के लिए हर बार ये पहले से ऐसा लेना अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात, ऐसे करते करते फिर एक बार संख्यात, ऐसे दो बार संख्यात जब आएगी, तीन बार संख्यात आएगी, ऐसे संख्यात भाग वृद्धि भी सुचंगुल के असंख्यात भाग बार हो जाएगी, तब जाके पूरा फिर पहले से ये पूरा झमेला करके एक बार संख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी, यानी ये पहला ऐसे रिपीट। अभी इसको बताने के लिए शास्त्र में उसको संदृष्टि यानी उसको सहना नहीं कहते, चिन्ह बताते। तो क्या चिन्ह हम देखेंगे, तो इसके लिए उन्होंने ये जो अनंत भाग वृद्धि है जो हमने पीले लाइन में बताई है उसको उ कहते हैं, उर्वांक कहते हैं, उ आई उ में जो उ है ना, तो हमने उ लिखा तो इसका अर्थ हुआ अनंत भाग वृद्धि। दो बार उ लिखा तो उसका अर्थ क्या हुआ, सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार अनंत भाग वृद्धि हुई। अब असंख्यात भाग वृद्धि के लिए चार संख्या लिखते हैं, क्योंकि अभी हम पीला नीला ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम उ चार कहेंगे तो उसका अर्थ होता है उ एक बार कहा तो उसका अर्थ होता है अनंतवा भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। उ दो बार लिखा उसका अर्थ क्या हुआ, हाँ अनंत भाग वृद्धि के स्थान कितने हुए, सुचंगुल के असंख्यात भाग बार, तब जाके एक बार चार यानी असंख्यात भाग वृद्धि का एक स्थान आया, फिर उ चार कहेंगे उसको, यानी ये जो चार संख्या दो बार आई उसका अर्थ हुआ असंख्यात भाग वृद्धि भी दो बार हो चुकी। तब जाके आगे फिर क्या होगा, फिर उ पांच कहेंगे अभी उसको, उ पांच, पांच का अर्थ होता है संख्यात भाग वृद्धि, ये चिन्ह है उसके, उ चार है, ये तीन तीन नहीं है, उ चार, देखो उ चार, उ चार और उ पांच, यहां तक अर्थ समझ में आया। उ पांच का अर्थ होता है संख्यात भाग वृद्धि। अब इसके आगे हम ऐसा ही लिखेंगे, संख्यात का चालू होता है परंतु उसके दोनों के बीच में अनंत भाग वृद्धि चालू ही रहती है, हर बार अनंत भाग वृद्धि चलती ही रहती है, ये किसी भी दो ये अनंतवा भाग वृद्धि का तो एक एक स्थान चलता ही रहेगा हमेशा, बीच बीच में कभी संख्यात भाग वृद्धि कभी असंख्यात भाग वृद्धि चलेगी, उसी क्रम से चलेगी। हाँ अनंत भाग वृद्धि तो हर बार चलती रहती है, तो असंख्यात भाग वृद्धि उतनी इतने बार अनंत भाग वृद्धि होने के बाद एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, उसके भी असंख्यात स्थान हो जाए, तब जाके एक बार संख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत असंख्यात और फिर संख्यात, फिर अनंत असंख्यात और असंख्यात, ऐसे करते करते संख्यात भी जब सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार हो जाएगी, तब ये पहले से पूरा झमेला फिर साथ में लेना, उसको नहीं छोड़ना, डायरेक्ट वो आगे नहीं चला जाना, फिर स्टार्ट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं आती, देखो किसी संख्या को अनंत, ये बड़े बड़ी संख्या की छोटी संख्या है, बड़ी है, बड़ी से भाग देंगे तो कुछ अलग बात आएगी, और असंख्यात उसे छोटा है, तो छोटे से भाग देंगे तो वहाँ बड़ा आएगा, और वो बड़ा वाला उसमें मिला देना है।
देखो ऐसा समझ लेते हैं हम, एक पिताजी है, उसके पास 10 करोड़ है और उसके 10 लड़के हैं, तो हर एक के खाते में कितना आएगा, 1-1 करोड़, और उसके 5 ही बेटे हैं तो कितने आएंगे, और एक ही बेटा है, वो संख्या संख्या से भागती तो भागाकर बड़ा है ना, वैसा यहाँ अनंत से भाग रहे हैं हम, बाद में असंख्यात से भागेंगे, मतलब इस तरह लेना।
कौन सी? हाँ। अनंत भाग वृद्धि। हाँ 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 हाँ, अनंत यानी अनंत अविभाग प्रतिच्छेदी वहाँ बढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने क्या देखा, ऊ चार और ऊ पाँच। अभी 5 जब 2 बार आएगा, अभी उसके लिए फिर ये जो 3 कॉलम है ये फिर ऐसे ही रिपीट करना है, तो यहाँ फिर ऊ चार और ऊ पाँच आएंगे, यानी 5 संख्या 2 बार आई, उसके अर्थ क्या हुआ, 5 हमने किसके लिए देखा था, संख्यात भाग वृद्धि के लिए, ये 2 बार यानी सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार जब संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी तो फिर से शुरू से करना, यानी ये पूरा जो है वो दोबारा रिपीट करना, यानी जब ये 5 होगा अगले 3 कॉलम करके वहाँ ऊ छः आएगा वहाँ पर, तो ये 6 का अर्थ होता है संख्यात गुणा वृद्धि। अब ये 6 तक आने के लिए 9 कॉलम हो गए, इसके अगला कॉलम क्या होगा, ऊ चार और ऊ छः, 5 के बदले 6 आएगा वहाँ, परंतु उसमें ये सब पूरा यहाँ से पूरा ही प्रोसेस उसमें समझ लेना चाहिए। अब ये जो 9 कॉलम बनाए ऐसे ही हमने और एक लाइन में ऐसे 9 कॉलम लिखेंगे, ये तो ऊ छः और ऊ छः 2 बार आया, तो 6 का अर्थ हमने क्या देखा था, संख्यात गुणा वृद्धि, तो 2 बार आया ने सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार जब संख्यात गुणा वृद्धि हुई, तब ये पूरा ही अभी ये जो 2 कॉलम है फिर वो पूरे के पूरे यानी 18 कॉलम फिर लिखना, तो उसके अंत में ऊ सात आएगा, तो दोबारा 18 कॉलम लिख के ऊ7 लिखना, यानी 7 संख्या 2 बार आई, उसका अर्थ असंख्यात गुणा वृद्धि के 2 स्थान यानी सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार जब असंख्यात गुणा वृद्धि हुई, तब जाके 1 बार अनंत गुणा वृद्धि हो गई, 1 बार हुई तब अपना 1 षट्स्थान पूरा हुआ, तो उसमें ये सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार कितनी बार अनंत गुणा वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि वृद्धि वृद्धि, हर किसी 2 बीच में अनंत भाग वृद्धि तो है ही है, और कभी कभी बीच में कभी असंख्यात भाग वृद्धि कभी संख्यात भाग वृद्धि, उसके भी उतने ही स्थान हो जाते हैं। ये तो समझ में थोड़ा कठिन है फिर भी पहली बार सुनते, आपने तो सुना है पहले। हाँ 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 हाँ, संख्या 4 का अर्थ होता है असंख्यात भाग वृद्धि और ऊ का अर्थ होता है अनंत भाग वृद्धि, हमने 6 स्थान दिखे, अनंत भाग वृद्धि के लिए ऊ कहा, असंख्यात भाग वृद्धि के लिए चार कहा, संख्यात भाग वृद्धि के लिए पांच कहा, संख्यात गुण वृद्धि के लिए छह कहा, असंख्यात गुण वृद्धि के लिए सात कहा और अनंत गुण वृद्धि के लिए आठ कहा। तो तब जाके एक षट्स्थान वृद्धि हुई, एक एक बार हो गया षट्स्थान वृद्धि, यानी वो अनंत गुणा हो गया ना, अभी अनंत भाग भाग करते 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 अनंत गुणा हो गया, तब वो अगला वाला षट्स्थान चालू हो गया। ये एक बार षट्स्थान हुआ, फिर दूसरी बार षट्स्थान, फिर तीसरी बार षट्स्थान, ऐसे पर्याय से लेकर अक्षर तक बीच में कितने स्थान है, तो कहते हैं असंख्यात लोक बार षट्स्थान वृद्धि होती है। असंख्यात लोक बार, देखो ये अंगुल बार करते करते हमें मुंह में फेम आ गया, हम फेस आ गया, तो वहां तो अंगुल से तो लोक कितना बड़ा होगा। तो ऐसे लोक में असंख्यात है ना, लोक ये संख्या क्या बताती है, असंख्यात वाला, उसको भी असंख्यात गुणा करो तो वो इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। उतनी बार अनंत गुणा वृद्धि, अनंत गुणा वृद्धि, ऐसे सब पूरे षट्स्थान बीच में आ जाएंगे। तो ये ज्ञान के कितने अलग अलग भेद हो गए,
यानी जब हम इसको असंख्यात लोक प्रमाण बार उसको हम षट्स्थान को करते हैं, तब जाकर पर्याय समास काल आखिरी भाग आएगा, उसके बाद अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान होगा। तो इस पर से तो अंदाज करो कि केवल ज्ञानी के ज्ञान का क्या मतलब सीमा है, उसकी है क्या किधर सीमा, यही पढ़ते पढ़ते हमको तो ऐसा हो जाता है, यानी केवल ज्ञान में क्या समाया होगा, उसके अविभाग प्रतिशत कितने अनंत 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 होंगे ख्याल में। ये खाली हम करना नियोग पढ़ते ना तो काल जय सोसरवट था, सो क्या बोलते हैं आप लोग
यानी अंत में हमने एक षट्स्थान वृद्धि होती है, तो हमने क्या किया, ये पूरा ये जो 18 कॉलम हमने देखे, उसके बाद 7 आया, फिर 18 होने के बाद 7 आया और फिर जाके 8 आएगा, 8वां आएगा। तो 8वां जो है ना अनंत गुण वृद्धि का स्थान, वो अगले षट्स्थान में लेते हैं, क्योंकि इस षट्स्थान से अगले षट्स्थान अनंत गुण वृद्धि का। अभी यहाँ जो एक वाक्य लिखा है उसका अर्थ आपको पता चलेगा, यानी यहाँ तक ये 8वां अगले में लेना, तो अंतिम जो षट्स्थान होगी ना पर्याय समास वाला, अंतिम षड्गुणी वृद्धि वाली होगी, उसमें जो 8 वाला स्थान होता है अनंत गुणा वाला, उसको हम अक्षर ज्ञान कहेंगे। और उसके पहले वाला क्या है, ऊ आठ, ऐसे ही अंतिम स्थान आता है अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान, और उसके आगे वाला एकदम अनंत गुणा वृद्धि वाला आता है, वो अक्षर नाम का ज्ञान होगा। नहीं अकेला 8, उसके पहले वाले जो अनंत भाग वृद्धि के असंख्यात स्थान है वो पर्याय समास में लेने, अंतिम, ये पर्याय समास का अंतिम, और ये अगला वाला है वो अक्षर। हाँ, असंख्यात लोक बार षट्स्थान वृद्धि हो चुकी, उसमें जो अंतिम, हर बार ऐसे लेना, जो 8-8 आता है अगले षट्स्थान में लेना। खाली पहली बार, जब पहली बार होता है तो ऊ तक ही लेना, और जब 8 अनंत गुणा होता है तो वो अगली षट्स्थान वृद्धि में, उसको पहला स्थान समझना उसका, अगली षट्स्थान वृद्धि का वो बिगिनिंग, फिर उसका अनंत भाग करते जाना। हमेशा मूल का अनंत भाग नहीं करना, मूल फिगर का, जो नई नई फिगर आती है उसका अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, वो अगले अगले फिगर का करना। नहीं, 8 लोग असंख्यात लोग बार 8 आएगा बीच, क्योंकि उतनी बार षट्स्थान वृद्धि हुई है। हाँ, यानी असंख्यात लोग बार अनंत गुणा वृद्धि हुई है बीच में, अनंत गुणा वृद्धि का एक ही स्थान आता है एक षट्स्थान में, तो असंख्यात लोग बार अनंत गुणा वृद्धि होकर अभी अक्षर नाम का, और कहने के लिए हम क्या कहते हैं, वो उसके अनंत गुणा है बस, अभी इससे और क्या समझाएंगे, क्योंकि इतना सुनेंगे तो दूसरे दिन कोई आने वाला नहीं, आप लोगों की रुचि है इसलिए समझाए गए साल हमने द्रोणागिरी में भी ये विषय लिया था थोड़ा। एक दिन लिया क्योंकि वहाँ लोगों की बहुत रुचि थी, एक सुना तो है शरस्थान शरस्थान क्या होता है ये, फिर दोबारा उन्होंने कुछ साहस नहीं किया बुलाने का।
वहाँ पर ऐसा हुआ था कि हम 6 घंटे वहाँ बोलते थे, तीन तीन दोनों, तो बीच में 1 बजे से लेके 3 बजे तक टाइम रहता था। तो क्योंकि 1 बजे तो आप ऐसा करो 1 से 2 बजे हमको सिखाना, हम सब लोग आएंगे। तो पहले दिन आए, दूसरे दिन किसी ने बोला नहीं कि आज आपको आना है 1 बजे। बहुत हेवी होता है जिनको कुछ मालूम नहीं है।
फिर भी वहाँ करना नहीं, पंचलब्धि चलाया था, अच्छा विषय चला, द्रोणागिरी
नहीं, नहीं बात तो ऐसी है कि हमको यहाँ पता लगता है कि ये पर्याय समास जो है, पर्याय ज्ञान कितना हम हीना 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 कहते हैं, पर उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, और अक्षर ज्ञान में उससे कितने अनंत गुना है, और फिर भी वो कुछ नहीं है। गुरुदेव जब कहते हैं कि अक्षर के अनंत में भाग जितना लब्धि अपर्याप्त निगोदिया का ज्ञान होता है, वो भी कितना है देखो, कि हमें या समझ में आने के लिए हमको तकलीफ होती है।
वो एक इंद्रियों को ये सारे भेद है, अनक्षरी ज्ञान है ना उनका,
बहुत इससे बड़ा है,
बहुत बड़ा है पंच इंद्रियों के, तो इससे कितने अनंत अनंत गुना है। अपने को हीन मत समझना, और पंच इंद्रिय जितने हम नहीं है वो भी पर्याय है अभी वर्तमान की, ये तो केवल ज्ञान स्वरूप है अपना, जो द्रव्यातिक नहीं जैसा, उससे बिल्कुल कुंडा पकड़ लेना, ये तो क्या पर्याय हीनाधिक होती जाती है। सोपशम ज्ञान अभी है तो कल क्या होगा, कोमा में चला जाएगा, ज्ञान की हीनता हो जाएगी, है ना, विस्मरण हो जाएगा, और क्या क्या होता है बीमारियां बहुत सारी चलती रहती है। देखो आपका प्रश्न है सुच्चंगुल और उच्छेदांगुल एक ही बात है क्या? अंगुल में 3 प्रकार पाए जाते हैं, कौन कौन से? उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। उच्छेदांगुल किसको कहते हैं? हाँ वो 8-8 गुना हमने देखे थे ना, हाँ, तो उसमें 8 यव का मिलकर जो प्रमाण होगा उसको उच्छेदांगुल कहा था। हाँ उसी को यहाँ ये भी उससे 500 गुना करेंगे तो प्रमाणांगुल कहते हैं। प्रमाणांगुल के किसको कहते हैं? तो अवसर्पिणी के प्रथम चक्रवर्ती के जो अंगुल का प्रमाण है उसको प्रमाणांगुल कहते हैं। और आत्मांगुल, आत्मांगुल अभी जो यहाँ हम देखते हैं चौथे काल में अलग है, पांचवें काल में अलग है, यहाँ की हम भरत क्षेत्र की बात करेंगे तो हाइट बॉडी वगैरह सब प्रोपोर्शन अलग है ना। जैसे भरत चक्रवर्ती का तो प्रमाणांगुल था, और हमारा अंगुल कितना है? और अभी और आगे चले जाओ 5वें के अंत तक तो और छोटे हो जाएंगे। तो वो तो उसको जिस काल में जो उसके प्रोपोर्शन है उस वहाँ के जो एवरेज आदमी होगा उसका जो अंगुल का प्रमाण है उसको हम आत्मांगुल कहेंगे। तो कौन से अंगुल से क्या क्या नापा जाता है वो सब आता है शास्त्र में। जैसे घर कितने है, झाड़ी कितनी है, आदमी कितने बड़ा है, वो उसके आत्मांगुल से कहेंगे। और ये जो अन्य जो हमेशा जो अन्य बातें हैं ना ये तो प्रमाणांगुल से कही जाएगी। प्रमाणांगुल से जो योजन और कोष आदि निकलते हैं उसकी बात, ये द्वीप समुद्र कितने वगैरह वगैरह, उसमें वो अंगुल नापा जाएगा। उस अंगुल से जो योजन आदि निकलते हैं, पहले भी बात आई थी अपने तीसरे भाग में वगैरह, हमने देखा था उसको। सुच्चंगुल में तो उच्छेदांगुल ले लेंगे हम, सुच्चंगुल में उसमें इतने प्रदेश है। अभी अंगुल तो पल्ले का कितना असंख्यात बार उसको वर्ग करते जाओ, वर्ग का वर्ग का वर्ग वर्ग, तब अंगुल में ही प्रदेशों की संख्या आएगी। हमें तो लगता है अरे पल्ले कितना बड़ा है और अंगुल तो ये क्या छोटा है, वहाँ प्रदेशों की संख्या लेना है और पल्ले में समयों की संख्या लेनी है। तो पल्ले में समय है उससे तो अंगुल में प्रदेश कितने अधिक है, कितनी बार असंख्यात 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 गुणा करो, वर्ग में करो, खाली गुणा नहीं करो। तो ये कर्णान योग का तो गणित ऐसा देखकर ऐसा अचंभा हो जाता है, और बिल्कुल फिटोफिट ऐसे विशिष्ट उसको कितने असंख्यात गुणा है क्या है वो प्रोपोर्शन सब बता देते हैं। कोई भी जीव ऐसे इमेजिनेशन तो ऐसी रचना कर ही नहीं सकता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान के मत है कि उन्होंने बताया इसलिए ये सब पता चल रहा है अपने। देखो ये जो यहाँ लिखा ना उसका अर्थ अभी आपको समझ में आई है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें जो इस प्रकार की लिखा है छठी लाइन में 22 पर है हम देखो कल बात की थी फिर देखेंगे हम पर्याय ये मति ज्ञान का भेद उन्होंने कहा सबसे हीन जो भेद है उसको मति ज्ञान का अभी श्रुत ज्ञान कब होता है मति ज्ञान के पश्चात होता है यानी मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है जैसे हमको घट का ज्ञान हुआ क्योंकि हमने घट शब्द सुना तो हम कहेंगे ये शब्द सुना ना वो कारण है और घट का ज्ञान किया वो कार्य है तो कार्य में कारण का उपचार करेंगे वैसे यहाँ पर पर्याय नाम के मति ज्ञान के बाद पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान हुआ तो पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान ये कारण है और पर्याय नाम का मति ज्ञान ये उल्टा मैंने उल्टा कहा पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान ये कार्य है और वो मति ज्ञान कारण है तो कारण का नाम पर्याय है कार्य को भी हम पर्याय कह देते हैं कभी कभी उल्टा भी होता है ना कार्य की ओर से कारण को भी नाम देते हैं आपको नहीं मालूम अश्विन भाई कारण की ओर से ये कार्य देखा हमने कार्य का नाम हम कारण को भी दे देते हैं अभी यहाँ क्या किया हमने कारण का नाम कार्य को दिया कारण क्या है मति ज्ञान के पर्याय नाम के मति ज्ञान वो कारण है उसका जो श्रुत ज्ञान हुआ उसको भी हमने पर्याय ज्ञान कह दिया एक कारण का उपचार कार्य में किया कभी कभी हम कार्य का उपचार कारण में करते कार्य को देखकर कारण को भी वही नाम दे देते हैं आपको मालूम है कोई ऐसा प्रवचन सार में अभी अभी हम पढ़ रहे थे देखो ये जो पुण्य और पाप ये प्रकृतियों के नाम है कर्म प्रकृतियों के तो जिन परिणामों से पुण्य प्रकृतियां बनती है उन परिणामों को भी पुण्य कहने में आता है जिन प्रकृतियों के द्वारा पाप प्रकृतियां बनती है अभी पाप और पुण्य किसमें भेद किया खाली आघाती में क्योंकि घाती तो सर्वत्र सबसे बनती है तो इसलिए उसके आगे और एक शब्द जोड़ा अकेले पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं कहा साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां जिससे बनती है उन परिणामों को पुण्य कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शुभ राग शुभ भाव और जिन परिणामों के कारण पाप प्रकृतियां बनती है असाता वेदनी आदि उन परिणामों को पाप परिणाम कहते हैं जो अशुभ भाव है द्वेष है आदि सब उसमें ले लेना वहां क्या किया कार्य का नाम कारण को दे दिया अब यहां पर कारण का नाम कार्य को दिया ये इसको कहते उपचार करना क्या लाया अभी हम छठी लाइन में आ गए इस प्रकार की असंख्यात लोक प्रमाण षडवृद्धियां ऊपर जाकर किसके ऊपर गए हम पर्याय से शुरू किया था उसके ऊपर कितने स्थान चले गए असंख्यात लोक बार षटवृद्धि के स्थान चले गए पर्याय समास नामक श्रुत ज्ञान का अंतिम विकल्प होता है विकल्प है ने भेद उसका अंतिम भेद मिला षट स्थान वृद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने के बाद उस अंतिम विकल्प को अनंत रूपों से गुणित करने पर अनंत रूप यानी अनंत संख्या जो अंतिम आठ वाला जो हमने देखा था ना आठ तो वो अंतिम ऊ था वो पर्याय समास वाला और आगे वाला आठ है वो अक्षर ज्ञान कहेंगे ये जो हमने भेद देखे उसका जो अंतिम जो अनंत भाग वृद्धि का स्थान है वो पर्याय समास वाला है और अंतिम अनंत गुणा वृद्धि का स्थान हो जाएगा वो अक्षर ज्ञान हो जाएगा इसलिए यहाँ कहते हैं अंतिम विकल्प को पर्याय समास नाम का जो ज्ञान है उसके जो अंतिम भेद है ज्ञान का उसको अनंत रूपों से यानी अनंत संख्या से गुणित करने पर अक्षर नामक श्रुत ज्ञान होता है अब ये ख्याल में आए चार पांच लाइन अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक तो कल का विषय हुआ अपना अब शंका उक्त प्रकार के इस श्रुत ज्ञान की अक्षर ऐसी संज्ञा कैसे हुई उसको अक्षर ऐसा क्यों कहा उसका समाधान करते हैं। नहीं, क्योंकि द्रव्य श्रुत प्रतिबद्ध एक अक्षर से उत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति की उपचार से अक्षर ऐसी संज्ञा है। क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत में अक्षर है, बहुत सारे अक्षर हैं, तो उसमें एक अक्षर संबंधी जितना ज्ञान का उघाड़ होगा उस ज्ञान को यहाँ अक्षर ज्ञान कहते हैं। अक्षर संबंधी ज्ञान का उघाड़ यहाँ लेना है। देखो क्या कहते हैं, फिर पढ़ेंगे। द्रव्य श्रुत प्रतिबद्ध एक अक्षर, द्रव्य श्रुत प्रतिबद्ध ने द्रव्य श्रुत में जो प्रतिबद्ध है, जिसके जिन अक्षरों से द्रव्य श्रुत की रचना हुई है, प्रतिबद्ध होना है ने रचित, द्रव्य श्रुत रचित कहेंगे। एक अक्षर से उत्पन्न, एक अक्षर से उत्पन्न हुआ ऐसा जो ज्ञान है उसको उत्पत्ति की उपचार से, वहां भी उपचार है उसका, वो ज्ञान हमको नापना है तो उपचार से उसको अक्षर ऐसी संज्ञा दे दी, उपचार से अक्षर ऐसी संज्ञा है। अब जैसे हमने पर्याय समास में षट स्थान वृद्धि देखी थी, पहले में पहले वृद्धि का स्थान कितने था, अनंतवा भाग करके उसमें मिला दो, फिर अनंतवा भाग करके उसमें मिला दो, ऐसे वहां पर स्थान थे। अब यहां पर कितना कितना होगा, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अक्षर नाम का ज्ञान, एक अक्षर संबंधी ज्ञान ऐसा वहां, द्रव्य श्रुति का जो एक अक्षर संबंधी ज्ञान है उसकी बात वहां हुई। अब उसका अगला भेद उसमें और एक अक्षर संबंधी ज्ञान मिला दो, यानी इसमें एक एक अक्षर से बढ़ेगा। खाली अल्फाबेट नहीं लेना है, द्रव्य श्रुत का जो है हाँ, उसमें भी अभी आप समझने के लिए एबीसीडी लिखो, परंतु वो एबीसीडी का ज्ञान वो चार ए बी सी डी को जाना तो चार अक्षर हो गए, ऐसा मत समझना। वहाँ द्रव्य श्रुत में जो अक्षर है वहाँ पर उस संबंधी ज्ञान की कितनी कैपेसिटी है, हाँ हमें तो अक्षर के बहुत आगे चले गए, हम पद के भी आगे चले गए, डोंट वरी, बहुत हम बहुत ज्ञानी है। हाँ बिल्कुल, हम जानेंगे ना, आगे अनुयोग तक भी जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। क्षोभम अवस्था में वो तो सब, ये तो श्रुत ज्ञान के ही भेद है, और हम श्रुत ज्ञानी है तो ये सारे हमको हो सकते हैं। आगे पद अनुयोग ये संघात अनुयोग आदि सभी जो उसमें आती है, पूर्व तक का भी ज्ञान हो सकता है, क्यों, हाँ हाँ क्यों नहीं होगा। पर्याय के बाद जो अक्षर है, दोनों के बीच में पर्याय समास देखा, उसके भेद भी देखे। अभी ये अक्षर की बात चल रही है यहाँ से, अक्षर नामक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का ये विशिष्ट भेद है, उसमें कितने अभी उसकी कैपेसिटी है तो वो हम अक्षरों में उसको बताते हैं। उतना नहीं है, निगोद जीवों में अक्षर नाम का ज्ञान कहाँ है, पर्याय पर्याय समास आदि भेद उनमें हो गए, यथा योगी जितने हैं अभी उसमें भी एकेंद्रीय बहुत सारे हैं, उनमें भी अलग अलग उसमें भेद हो गए। तो यहाँ जो कहते हैं,
देखो अभी आपको बताया गया था कि लब्धि अपर्याप्त निगोदिया जीव जो होता है उसको अक्षर नामक जो श्रुत ज्ञान है उस अक्षर ज्ञान के अनंतवा भाग उसको ज्ञान का उघाड़ है, वो मिनिमम मोस्ट कौन सा है, तो वो पर्याय ज्ञान है। और पर्याय के आगे जो पर्याय समास वाले जो अनेक भेद है उसमें से जो यथा योग्य होगा वो हो गए, लेकिन उसको अक्षर ज्ञान नहीं होगा, इतनी हीनता है उस ज्ञान की।
अभी यहाँ हम द्रव्य श्रुत की अपेक्षा ही ये भेद करेंगे, अक्षर फिर एक एक अक्षर बढ़ता हुआ ज्ञान, यहाँ तो ये, तो यहाँ कहा ना उपचार से कहा उसको, तो अभी तो ये एक अक्षर को जानने वाला दो अक्षर को ऐसा ही कहेंगे कहते समय, परंतु फिर भी वो द्रव्य श्रुत संबंधी अक्षर समझना। वहाँ देखो यहाँ क्या कहते दो अक्षर आएंगे, एक एक अक्षर से बढ़ता हूँ, वही तो मैं बताना चाहती। पर्याय समास में हम अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, फिर कभी असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसे स्थान देखे थे। अब यहाँ अक्षर से शुरू किया, फिर उसमें एक अक्षर और बढ़ गया, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, छह अक्षर, क्रम से एक एक अक्षर बढ़ता हुआ ज्ञान होगा, लाख अक्षर, करोड़ अक्षर। बाद में पद नाम का ज्ञान आएगा। तो एक पद में जितने अक्षर है, कौन सा पद? अरे मैंने आम खाना, ये भी पद हो गया। खाली आम कहेंगे वो भी पद हुआ हा? वो तो साधारण अर्थ पद कहते, और यहाँ जो पद है वो मध्यम पद है। पद के भी तीन भेद है, एक तो अर्थ पद, कोई भी दो अक्षर हम साथ में रखते हैं तो उसका कोई ना कोई उसमें से अर्थ निकलता है। जैसे हमने ढ और फिर ग ऐसे दो अक्षर लिखे तो ढ ग है ना, कोई शब्द तैयार हुआ, मीनिंग हुआ उसमें से, वो अर्थ पद है। मेघ, हमने मराठी ढ ग कहा, मराठी का मेघ कहा आ का श ऐसा लिखा ना, तो तीन अलग अलग अक्षर लिखे, तीन अक्षरों के द्वारा यहाँ पद तैयार हुआ, वर्ड, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है तो उसको अर्थ पद कहेंगे। अब प्रमाण पद, विशिष्ट संख्या में जो अक्षर है, जैसे हम छंद है, कोई आर्या है, शार्दुल विक्रीडित है, मंदाक्रांत है, जो कोई अलग अलग आते हैं ना, या नमः समय साराय एक पद हुआ, स्वानुभूत्या चकासते दूसरा हुआ, चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर अच्छे हर एक में कितने अक्षर है? चार, हाँ आठ आठ है। वैसे रत्नकरण शावकाचार में भी है ना, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, आठ 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 आठ। तो इसको कहते हैं प्रमाण पद, उसकी संख्या निश्चित है। अलग अलग जो छंद है, आर्या है, जो कुछ है, उनके अपने अपने संख्या निश्चित होती है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो पहले। अभी यहाँ वाला जो पद है वो मध्यम पद है, तो इस मध्यम पद में कितने अक्षर लेना, तो यहाँ जो बात होगी वो अपुनरुक्त की अक्षर की बात है। जैसे नमः समय साराय स स दो बार आया, वैसा नहीं चलेगा। यहाँ बहुत बार आ गए, लाखों बार आ जाए तो भी एक बार आता है तो एक ही बार गिनना। जैसे अंग्रेजी की बहुत इतनी बड़ी नॉवेल हमने पढ़ी, हजार पन्ने की, उसमें अल्फाबेट्स कितने हैं भाई? हाँ, तो अपुनरुक्त अक्षर उसमें 26 ही आए, क्योंकि उसमें तो जोड़ाक्षर होता नहीं है और यहाँ पर ये जो संस्कृत वगैरह जो है उसमें तो आधा स, फिर और उसके य भी लगाया, स्य किया, उसको आ लगाया तो स्या हुआ, स्याद वाद है ना, या विद्यार्थी द य और जो कुछ है वो ऐसा, या विंध्य न भी ध भी य भी आ भी, इतने सारे हैं, चार चार संयोग हुए। ऐसे यहाँ तो 64 जो मूल अक्षर है और उसके आपस में ऐसे संयोगी भंग भी बहुत हो गए। तो यहाँ अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होगी तब एक पद कहेंगे। तो आती है बात, 1634 करोड़ 83 लाख 7888, इतने अपुनरुक्त अक्षरों का एक मध्यम पद होता है। जैसे है शब्द आप करोड़ों बार आए तो हम एक ही बार समझेंगे उसे। ये तो हमें तो जिनवानी की अगाधता का पता ही नहीं है। ये पद तो सबसे कम ज्ञान है। आगे संघात है, प्रतिपत्ति है, अनुयोग है, और क्या क्या है। तो ये क्या है समझकर ही हम डर जाते हैं। वो समझने, उसका विषय समझने में इतना पसीना छूटता है तो देखो हम ये अभी यहाँ से देखते हैं, फिर हम यहाँ आए 22 पेज पर नीचे। इस अक्षर श्रुत ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की ही वृद्धि होती है, वहाँ वो असंख्यात अनंत वगैरह वगैरह वृद्धि कुछ नहीं है। पहले अक्षर नामक ज्ञान है, उसके आगे वाला अक्षर में और एक, यानी दो अक्षर वाली होगी, तीन अक्षर वाली, चार अक्षर वाली, ऐसा लेना उसमें। अन्य वृद्धियां नहीं होती, यानी वो षट्स्थान वृद्धि वाला यहाँ कोई झमेला नहीं है। इस प्रकार आचार्य परंपरागत उपदेश पाया जाता है, संख्यात होंगे। देखो और क्या कहते हैं, कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं अक्षर श्रुत ज्ञान भी छह प्रकार की वृद्धि से बढ़ता है, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि समस्त श्रुत ज्ञान के संख्यातवे भाग रूप अक्षर ज्ञान से ऊपर छह प्रकार की वृद्धियों का होना संभव नहीं है। क्या कहते हैं, समस्त श्रुत द्रव्य श्रुत है उसके अक्षर कितने हैं, समस्त द्रव्य श्रुत के अक्षर, वो भी अपुनरुक्त अक्षरों की बात है, आपको मालूम है? हाँ, संख्यात बिल्कुल होगी, तो करोड़ों भी संख्यात ही है, लाखों भी संख्यात है, अबजों भी संख्यात है, कितने हो गए, 64 करोड़। अरे आप द्रव्य शुद्ध को बहुत कम लिख रहे हैं, पहले देखा था। अच्छा देखो यहाँ भी ये अक्षर कैसे गिनना है, मूलभूत कितने अक्षर है, तो स्वर और व्यंजन सब मिलकर 64 हो जाते हैं। अभी हमारे पास तीन ही कोई ए है, बी है और सी है, तीन चीजें हैं, अब इनके कॉम्बिनेशंस देखना है, तीनों को एक साथ एक 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 रखो, ए बी और सी, वो तीन हो गए, ए बी बी सी और ए सी, ये तीन हो गए, और ए बी सी वाला कॉम्बिनेशन एक हो गया, तो इसके सात भंग हो गए तीन चीजों में। अभी हमारे पास अक्षर कितने, 64 है, तो ये तीन में कैसे सात भेद निकले, तो तीन है ना, तो दो संख्या को तीन बार गुणा करो आपस में, आठ आए, आठ में से एक माइनस करो, उतने भंग होते हैं, ये बिल्कुल आंखें बंद करके आप बता दो। ऐसे यहाँ हमारे अक्षर तो है 64, तो 64 बार दो को आपस में गुणा करो, कितने आते हैं बोलो फटकर, 64 ये किसका अर्धच्छेद है, इकट्ठी का। देखो दो संख्या दो बार गुणा करते तो चार आते, चार बार गुणा करते तो 16 आते, आठ बार गुणा करते तो 256 आते, 16 बार गुणा करते तो 59 आती है, 32 बार गुणा करेंगे आपस में तो 12 आता है, और 64 बार गुणा करते हैं आपस में तो 31 आती है, वो कितने 20 डिजिट प्रमाण है ना, वो 31 संख्या, उसमें से एक माइनस करो, ये संपूर्ण द्रव्य श्रुत के अपुनरुक्त अक्षर है, रिपीट नहीं, रिपीटेड हो भले परंतु अपुनरुक्त अक्षर इतने हैं पूरे द्रव्य श्रुत के अक्षर। हाँ, सिंगल सिंगल अक्षर एक बार लेना, फिर कॉम्बिनेशन वाले लेना, 64 भंग वाला भी एक बार ले सकते हैं। अभी 64 का मिलकर क्या उच्चार होता होगा पता नहीं। हाँ 10 का क्या, 5-6-7 तक, 5 तक मैक्सिमम जा सकेंगे आप, उसके आगे नहीं। ये संपूर्ण द्रव्य शुद्ध के हैं अक्षर। देखो 64 है सभी टोटल अक्षर है, जैसे पहले हमने तीन अक्षर लिए थे एबीसी और उस पर घटित करके दिया था, वैसे 64 में कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सब मिलके, हाँ हाँ सात, तीन जहाँ है वहाँ सात ही, इसलिए हम वो सप्तभंगी क्यों होती है, उसने ये फॉर्मूला है। हाँ 64 बार दो दो करना आपस में गुणा करना तो इकट्ठी आती है, इकट्ठी ने क्या, देखो 65,536 को हम पन्नटी कहते हैं, उसका वर्ग बादल और उसका वर्ग इकट्ठी, दैट इज अ 20 डिजिट फिगर, स्टार्ट्स विद 18 18, इसीलिए उसको इकट्ठी कहते हैं, इकट्ठी एक और आठ, और बादल क्यों कहते हैं, 42 से शुरू होता है। हाँ वो 10 अंक प्रमाण है, पन्नट्टी क्यों कहते हैं, 65 है इसलिए पन्न। तो एक संग, ये जो कोई भी वर्ड होता है वो कैसे तैयार होता है उसका थोड़ा विचार करेंगे तो ख्याल में रह जाता है, कल बात आई थी ना, रुचि हो तो याद रह जाता है, ये रटना नहीं पड़ता। ये अपने पंडित जी उदाहरण देते थे ना, अपने नेमचंद जी ना, कौन ये दुकान है, कोई किराना माल का दुकान है, उसको कोई भी पूछो हमको ये चीज़ चाहिए, बिना देखे ऐसा हाथ डालेगा और निकाल के देगा, तो उसको पता है कहाँ से डब्बे में क्या रखा है, कैसा है, वो सब बिल्कुल। तो वहाँ उसका कुछ रुचि पड़ी है उसकी। और अपने घर में क्या कम झमेला है, हा? तो कहाँ क्या रखिए बराबर ख्याल आता है, इतना ही ख्याल आता है कि अरे उस दिन तो मैंने उसके घर में जाते समय ये साड़ी पहनी थी, अभी आज फिर दोबारा वही साड़ी पहनूं तो क्या कहेंगे लोग। तो वो बराबर ध्यान रहता है हमारे लेडीज के। चलो ये तो अक्षर ज्ञान में जो है ना, यहाँ से जो अक्षर ज्ञान है उसमें ये अनंत षट्स्थान वृद्धि के स्थान नहीं होंगे, वो तो असंख्यात में चले जाते हैं, और अक्षर तो लिमिटेड है, संख्यात है।
इस
अनंत यही आचार्य कहते, कितने आचार्य कहते उसके इन बिटवीन कुछ स्थान होंगे, परंतु यहाँ अक्षर ज्ञान में हम नाप रहे हैं, अभी यहाँ संख्यात ही स्थान होंगे, वो असंख्यात अनंत भाग वृद्धि वाले स्थान यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है मापने का, अक्षरों का, उसी में मापेंगे यहाँ। चौसठ का एक भंग, एक अक्षर हो गया चौसठ का मिलकर, हाँ चौसठ संयोगी भंग कहते उसको। पांच का भी होगा, उसमें भी अ अ अ जोड़ना है आगे, खाली अ नहीं, अ भी आ भी और बड़ा आ भी, उसमें तीन तीन करते हैं स्वरों में, उ और एक बड़ी उ करते हैं, वो मूल संस्कृत में ऐसा चलता था। यानी वो दो कहने वाला आ। हाँ देखो अभी हम 23 पृष्ठ पर आ गए, चलो आज हम आधा ही पेज पढ़ा हमने। हाँ अक्षर 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 श्रुतक ज्ञान से उपरिम उपरिम मैंने उसके आगे वाले, यानी दो अक्षर वाले तीन अक्षर वाले ऐसे, और पद श्रुतक ज्ञान से अधस्तन यानी उससे कम वाले नीचे वाले श्रुतक ज्ञान के संख्यात विकल्पों की, कितने विकल्प कहे, विकल्प है भेद, संख्यात है, संख्यात क्यों अभी हमने देखे थे, क्योंकि अक्षर ही संख्यात है और उसमें से कुछ अक्षरों की बात है यहाँ, इतने विशिष्ट अक्षरों के समूह को हम पद कहेंगे, तो उसमें से एक कम करो तो वो अक्षर समास में आ जाएगा, अक्षर ज्ञान में एक और मिला दो अक्षर समास वहाँ से शुरू होगा, मिनिमम अक्षर समास से, जघन्य अक्षर समास से, उत्कृष्ट अक्षर समास तक, ये बीच वाले भेद हो जाएंगे, इसलिए वहाँ क्या संख्यात विकल्पों की, अक्षर समास यह संज्ञा है उसको कहते हैं अक्षर समास ज्ञान, अक्षर नाम का एक ज्ञान हुआ, अगला जो है वो पद नाम का होगा, और उसके इन बिटवीन जो है उसमें जो संख्यात भेद होंगे एक एक बढ़ते हुए अक्षरों के, तो उसको कहेंगे अक्षर समास। इस अक्षर समास श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर ज्ञान के बढ़ने पर पद नाम का श्रुत ज्ञान होता है, अंतिम अक्षर ज्ञान समास जो है ना, अक्षर समास ज्ञान लास्ट वाला, उसमें और एक अक्षर मिला दो तो पद नाम का श्रुत ज्ञान हो जाएगा। शंका, उक्त प्रकार से इस श्रुत ज्ञान की पद यह संज्ञा कैसे है, उसको पद क्यों कहते हैं, तो उसका समाधान करते हैं। 1634 करोड़ 83 लाख 7888 हम 7888 कहते थे, वे हमको वैसे ही याद हो गया है, 83 लाख 7888 को या 7888 को, एक ही बात है, इन इतने अक्षरों को लेकर द्रव्य श्रुत का एक पद होता है, इसको कहते हैं प्रमाण, ये मध्यम पद, और इन मध्यम पदों के द्वारा द्रव्य श्रुति की रचना होती है। जब हम अंगों की बात करते हैं ना, एक एक अंग के वो इतने पद गाए, हाँ वो सरस्वती पूजन करते हैं, हाँ आते हैं ना, एक एक पद के ये गाए, 18,000 पद पहले आचार अंग में होते। तो एक पद कितने अक्षरों का है देखो, वो भी अपुनरुक्त अक्षर, और वो तो रिपीटेड में आने ही वाले हैं। हाँ कोई भी, मगर अपुनरुक्त अक्षर कितने उसमें 18,000 उसमें पद आएंगे, तो उसमें इतने इतने अक्षर आएंगे, एक एक पद में इतने अक्षर, और ऐसे ऐसे 18,000 पदों से वो पहला आचार अंग होता है। अगले अगले अंग तो बढ़ते हैं। देखो इन अक्षरों से उत्पन्न हुआ भावश्रुत भी उपचार से पद ऐसा कहा जाता है। भावश्रुत है यह ज्ञान की पर्याय लेना, द्रव्य श्रुत यहाँ कितने अक्षर है क्या है उसकी अपेक्षा हम द्रव्य श्रुत को भी वहाँ श्रुत ज्ञान का भेद कहलाते हैं, परंतु उस संबंधी जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी यहाँ पद ज्ञान कहा है। ज्ञान को पद संख्या पद जो बताया है वो द्रव्य श्रुत के अक्षरों की अपेक्षा यहाँ ज्ञान को भी अक्षर ज्ञान पद ज्ञान ऐसा कहा है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, विषय की तरफ से उसको भी नाम दिया ना। इस पद नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमित, अभी यहां से आगे कहीं भी जाओ एक एक अक्षर से बढ़ोतरी होगी। पद की जो संख्या अभी हमने देखा था, देखी थी 1634,83,07,888, 88 के बदले 89 हो जाएंगे, तो वो पद समास का पहला भेद हो जाएगा, 90 हो जाएंगे, 7,890 तो पद समास का दूसरा भेद, ऐसे एक एक अक्षर से बढ़ेगा आगे, तो उसको कहते हैं पद समास। सामास हुआ उसको समास करना, तो पद समास नामक श्रुत ज्ञान होता है, यानी उसके भी संख्या भेद हो जाएगी ना पद समास के भी। पद में जितनी अक्षरों की संख्या है पद के आगे और एक एक बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार एक एक अक्षर आदि के क्रम से पद समास नाम का श्रुत ज्ञान बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है जब तक कि संघात नाम का श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। यानी पद में एक 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 अक्षर बढ़ाते चले जाओ, कहाँ तक? वो संघात वाला अगला भेद होगा, तो संघात के पहले एक अक्षर कम करो, वहां तक पद समास हो गया, बराबर ख्याल है ना? पद के बाद एक एक अक्षर मिलाते जाओ और संघात में एक अक्षर कम करो, वहां तक के बीच वाले भेद है उनको कहेंगे पद समास श्रुत ज्ञान। इस प्रकार संख्यात पदों के द्वारा संख्या संघात नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं? ऐसे खाली एक पद से दो पद, दो पद से चार पद, ऐसे भी संख्यात पद कहां? खाली पद में जितनी संख्या है उतने अक्षर बढ़ते ऐसा नहीं कहा, यानी पद डबल हो जाए ऐसा नहीं कहा। संख्यात पद हो जाने के बाद संघात नाम का श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार संख्यात पदों के द्वारा संघात हो गया, चारों गतियों के द्वारा मार्गणा होती है। ये संघात उसको क्यों कहा उसकी बात चल रही है। तो चारों गतियों के द्वारा मार्गणा होती है, कौन सी मार्गणा होती है? वो गति मार्गणा। उनमें जितने पदों के द्वारा नरक गति की एक पृथ्वी निरूपित की जाती है, क्या जाते हैं? नरक के एक पृथ्वी संबंधी वर्णन जितने पदों के द्वारा होगा उतने पदों की और उनसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान की संघात ऐसी संज्ञा होती है। वहां ज्ञान को भी और वहां पदों को भी एक साथ लिया। क्या कहते हैं? नरक गति के संबंध में एक पृथ्वी का जहां वर्णन करना है उसके लिए जितने पदों के द्वारा उसका निरूपण होता है उतनी जो संख्या है पदों की उसको संघात कहते हैं। उन अक्षरों को भी कहेंगे और उतने ज्ञान को भी कहेंगे। मिनिमम उसमें कोई एक फॉर एग्जांपल ऐसा बताना है। ये तो एक ही आपको एग्जाम्पल दिया। सब सब में लगाना, अभी एक पृथ्वी का किया, दूसरी पृथ्वी के लिए उतने विशिष्ट पदों की संख्या है, उतने पदों के समूह को हम संघात कहेंगे। अब देव संबंधी कोश निरूपण कर रहे हैं, उसको भी कहेंगे, उतने पदों का समूह है वो। तो यहाँ देखो आगे लिखा है, इसी प्रकार, ये उनका कहना समाप्त नहीं हुआ है, इसी प्रकार सर्वगतियों का और सर्व मार्गणाओं का, है ना, बात आ गई ना अपनी। पहले में पहली गति मार्गणा है और उसमें हमेशा वो तो नर गति से शुरू करते हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल लेके बताया। इसी प्रकार प्रत्येक गति का और मार्गणा जो 14 है वो सबके उतने उतने भेद है। अभी हम सब प्रत्येक बात हर गुणस्थानों में ओग से और आदेश से देखते थे, वैसे मार्गणाओं में हर एक मार्गणा का अलग अलग वर्णन होगा, तो उनके यहाँ वैसे अलग अलग उसका आश्रय करके कहना चाहिए। यानी हर एक डिस्क्रिप्शन ही है, परंतु उसमें कितने पदों की आवश्यकता है। जैसे मार्गणाओं का वर्णन है, और मार्गणा के 14 भेदों में भी एक एक मार्गणा के बहुत सारे भेद है, जैसे गति मार्गणा के 4 भेद है, तो उसका एक भेद बताने के लिए जितने पदों की वहाँ आवश्यकता नहीं, जितने पदों के द्वारा उसका वर्णन किया हुआ है तो उतने अक्षरों को भी वहाँ संघात कहेंगे और उतने ज्ञान को भी संघात नाम का ज्ञान कहेंगे, दोनों ओर लगाना उसको। इस संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमित, प्रमित यानी उतना उतना माप उसका, एक एक अक्षर से बढ़ते हुए ज्ञान की वो हम बात करेंगे। एक अक्षर प्रमित श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर संघात समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। जैसे हमने पद के बाद एक एक अक्षर से बढ़ते हुए पद समास के बहुत सारे भेद देखे, वैसे संघात के बाद संघात समास नाम के बहुत सारे ने संख्या थी होंगे, उतने भेद हो जाएंगे। इस प्रकार संघात नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि अक्षर श्रुत ज्ञान से कम, यानी एक अक्षर से कम प्रतिपत्ति, संघात के बाद का नाम है प्रतिपत्ति ज्ञान। तो संघात में एक अक्षर बढ़ा दो तो संघात समास शुरू हुआ, और प्रतिपत्ति में से एक अक्षर कम कर दो तो वहां तक तो संघात समास का अंतिम भेद होगा। इसलिए कहते हैं एक अक्षर श्रुत ज्ञान से कम प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो अभी आसान है ना, अभी एक एक अक्षर से बढ़ता है, संघात में एक 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 बढ़ते जाओ तो अगला वाला मेन भेद कौन सा होगा, वो प्रतिपत्ति, और इन बिटवीन बीच में संघात समास। प्रतिपत्तिक में अभी बताएंगे, संघात में तो एक मार्गणा का एक भेद उस संबंधी प्ररूपण करने वाले पदों की संख्या ली थी, अब यहाँ प्रतिपत्तिक में किसको लेना, प्रतिपत्ति वाला। देखो जितने पदों के द्वारा एक गति इंद्रिय काय और योग आदि मार्गणा प्ररूपित की जाती है उतने पदों की प्रतिपत्ति यह संज्ञा है। तो संघात और प्रतिपत्ति में क्या भेद है? हाँ देखो, हमने एक एक मार्गणा का एक भेद नरक गति देखा, और उसमें भी प्रथम पृथ्वी वाला और एक कुछ भेद किया, डिवीजन का डिवीजन और हो गया वहाँ, उतने पदों की संख्या को संघात कहा था। यहाँ पर एक मार्गणा संबंधी उसको प्रतिपत्ति ज्ञान कहा, यानी गति मार्गणा संबंधी जो सब है, 4 गति है उसके अलग अलग जो उसकी कोई विशेषता है। एक मार्गणा संबंधी,
एक मार्गणा तो वो सभी मार्गणा में समान है
नहीं, कम ज्यादा होगा?
कम ज्यादा होगा।
देखो क्या कहते हैं, ये प्रतिपत्ति हुआ ना, उतने पदों की, फिर पढ़ती हूँ सेकंड लाइन, जितने पदों के द्वारा एक गति इंद्रिय, एक लगाए ना पीछे, हाँ एक गति यानी एक मार्गणा पूरी, एक रुकना गति इंद्रिय का योग आदि मार्गणा यानी एक मार्गणा, तो मार्गणा में किस किस को लेना, तो गति मार्गणा इंद्रिय मार्गणा का योग वगैरह वगैरह 14 मार्गणा है। प्ररूपित की जाती है उतने पदों की प्रतिपत्ति यह संज्ञा है। ये कौन से पद? वो 1634 वाले। तो हम भी ये मार्गणा वगैरह सीख गए तो ये प्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होगा। इतने पदों के द्वारा जो निरूपित किया था ना, अभी उस संबंधी हमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है क्योंकि मूल से वो चला आया है, उसमें से कुछ नीचे आते आते हमारे पास कुछ आ गए ना, उस संबंधी कुछ हम थोड़ा जान रहे यहाँ पर। तो ये प्रतिपत्ति है, यानी एक एक मार्गणा संबंधी जो ज्ञान है वो प्रतिपत्ति ज्ञान कहलाएगा। प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रतिपत्ति समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। अभी इसके आगे प्रतिपत्ति समास होगा। इस प्रकार प्रतिपत्ति समास श्रुत ज्ञान ही बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम अनुयोग द्वार नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रतिपत्ति के बाद आगे वाला जो है अनुयोग द्वार, अनुयोग कहो या अनुयोग द्वार कहो, उसी को अनुयोग कहते। अभी उसका और वर्णन करते। 14 मार्गणाओं से प्रतिबद्ध ने रचित जितने पदों के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उतने पदों की और उनसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान की अनुयोग यह संज्ञा है। हाँ, 14 सब मिलकर उसको अनुयोग कहेंगे। उस अनुयोग श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार अभी अनुयोग तक हम देखेंगे। सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू किया था श्रुत ज्ञान को देखना? पर्याय, फिर पर्याय समास, उसके बाद अक्षर और अक्षर समास, उसके बाद पद और पद समास, उसके पश्चात संघात और संघात समास, और उसके बाद प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति समास, और अब अनुयोग और अनुयोग समास। 20 में से तो इतने सारे हम पार चुके। अभी शॉर्ट में ऐसे बीच वाले तो समास समास लगाना, यानी पर्याय, फिर अक्षर, फिर पद, फिर संघात, फिर प्रतिपत्ति, फिर अनुयोग, 6 तो हो गए। हाँ, यह संज्ञा है। उस अनुयोग श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान एक एक अक्षर की उत्तर वृद्धि से यानी बढ़ते हुए बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम प्रावृत प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी अनुयोग के अगले वाले का नाम क्या है? प्रावृत प्रावृत। उसके ऊपर नहीं नहीं, फिर पढ़ना, पूछ प्रश्न, फिर पूछना। समान कैसे हो गए? एक पद के अक्षर फिक्स है परंतु एक एक मार्गणा का वर्णन करते हुए कितने वो अलग अलग उसमें हो जाएगा, उसमें अलग अलग भेद होगी कितने। यहाँ तो पदों की संख्या हम गिन रहे, देखो एक पद, देखो सुनो, पहले हम ऐसा कहो अक्षर समास के कितने भेद हैं? उसमें से एक कम कर दो क्योंकि उतने तो पदों की संख्या है, 7888 आगे जो है ना, 1634,83,8,7888, उसमें एक कम करो, 7887 उतने भेद अक्षर समास के हैं। उसके आगे पद आया तो क्या पद समास के भी इतने भेद होंगे? क्योंकि इतने पदों की जो संख्या है वो वेरिएबल है ना, और उसमें एक एक अक्षर से बढ़ते हुए, यानी हमको मान लेते 10 पद चाहिए तो एक पद में 1634 करोड़ वगैरह वगैरह, तो ऐसे 10 पदों की उसे मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगी। तो अक्षर समास और पद समास इक्वल कैसे हो सकते हैं?
तो ये तो निरंतर ये बढ़ता ही जाता
है। जाने दो ना, ज्ञान के इतने सारे भेद है तो बढ़ रहे, हम क्या करें उसको। आप शुद्ध ज्ञान में आप बढ़ने की चिंता कर रहे हो, अभी केवल ज्ञान में कितना बढ़ जाएगा? देखो अभी हम यहाँ तक आ गए, ये हमने देखा था ना अनुयोग समास कितना कहा, तो एक एक अक्षर बढ़ते हुए प्रावृत प्रावृत से एक अक्षर कम तक वो सब अनुयोग समास कहेंगे। हाँ, और उसके ऊपर एक अक्षर बढ़ जाए तो प्रावृत प्रावृत हो जाएगा। अब संख्यात अनुयोग द्वार रूप श्रुत ज्ञानों के द्वारा एक प्रावृत प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान होता है। ये संख्यात अनुयोग द्वार उसके द्वारा एक प्रावृत प्रावृत श्रुत ज्ञान होता है। उस प्रावृत प्रावृत श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रावृत प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी अभी तक हम पद, फिर संघात, उसके बाद प्रतिपत्ति, फिर अनुयोग, फिर प्रावृत प्रावृत और उसके ऊपर एक अक्षर आदि की वृद्धि के क्रम से प्रावृत प्रावृत समास तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पहले प्रावृत प्रावृत को लेना, बाद में प्रावृत को लेना। उस प्रावृत श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर से बढ़ने पर प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि के क्रम से प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम 20वां प्रावृत प्राप्त होता है। इसका अर्थ होता है 20 प्रावृतों का एक वस्तु नामक श्रुत ज्ञान होता है। इसलिए 20 प्रावृत से कम जो अक्षर है वहां तक प्रावृत समास कहलाएगा। पहले तो हम जैसे कहते हैं ना संख्यात पदों, वैसे यहाँ संख्यात यानी कितने, 20 प्रावृतों का एक वस्तु नामक अधिकार होगा। 20 20 कहते हैं ना उसको, 20 कहो या 20 कहो एक ही बात है। इस 20वें प्रावृत के ऊपर यानी 20 प्रावृत के ऊपर 20 प्रावृत होने पर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर वस्तु नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी 20 प्रावृतों की एक वस्तु नामक श्रुत ज्ञान होगा। बीच वाले 20 प्रावृत, 19 प्रावृत क्या होगा, प्रावृत समास कहलाएगा। प्रावृत प्रावृत के ऊपर एक 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 अक्षर से बढ़ता हुआ, बीच में एक पद से बढ़ गया, दो पद से बढ़ गया, संघा से बढ़ गया, ऐसा बीच में कह दो तो कह दो, तो उसमें कहाँ तक करना, ऐसे 20 प्रावृतों की जितनी संख्या वहाँ तक जब बढ़ जाए तो 20 प्रावृत में एक अक्षर कम वहाँ तक तो प्रावृत समास, 20 प्रावृत पूरे होते ही वस्तु, 20 प्रावृत पूरे होते ही वस्तु कहेंगे उसको। देखो ये छठी लाइन में वस्तु नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। उस वस्तु श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर वस्तु समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम अंतिम वस्तु नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त हो। अब यहाँ भी संख्यात वस्तुओं के द्वारा पूर्व होगा, इसलिए अंतिम वस्तु कहा, यानी इतने इतने वस्तुओं का एक पूर्व। इस अंतिम वस्तु श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर पूर्व नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको पूर्व कहते हैं। 11 अंग 9 पूर्व वाला जो पूर्व है वो यहाँ आ गया। उस पूर्व नामक शुद्ध ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर पूर्व समास का है ना। देखो वस्तु हुआ, वस्तु समास हुआ, अब पूर्व और पूर्व समास। पूर्व समास नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व समास श्रुत ज्ञान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि लोक बिंदुसार। ये क्या है लोक बिंदुसार, कभी सुना है नाम? हाँ क्या है? 14वें पूर्व का नाम है। तब तक कि लोक बिंदुसार नामक 14वें पूर्व का अंतिम अक्षर उत्पन्न होता है। बारह अंग के जो 14 पूर्व मैक्सिमम जो संख्या है। इस प्रकार के श्रुत ज्ञान का, ये विषय हमारा चल रहा है श्रुत ज्ञानावरणीय का तो ऐसे ऐसे जो अनेक भेद है श्रुत ज्ञान के, ऐसे ऐसे नहीं, इस प्रकार के श्रुत ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म श्रुत ज्ञानावरणीय कहलाता है। हाँ? आप देखो हम कैसे कहेंगे आपका श्रुत ज्ञान कहाँ है हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ अक्षर से ऊपर है इतना तो हम कह सकते हाँ बिल्कुल है, हर एक को है ना, पर्याय ज्ञान तो सबको है। अभी अवधि ज्ञान की बात चलेगी, अवधि ज्ञानावरण समझाने के लिए पहले अवधि ज्ञान की भी बात उठाएंगे। कौन सा
ज्ञान जो है वो स्थिर नहीं
है? हाँ उसमें भी उगाड़ कम ज्यादा हो जाता है, ज्ञानावरणीय का भी वो उदय अलग अलग होता है, और यहाँ जीव की भी पर्याय अपनी योग्यता से ज्ञान का जो उघाड़ है, ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा होता रहता है। बिल्कुल होता है, एक ही भाव में क्या, पांच पांच मिनट में, एक एक समय में उसमें भेद हो गए कि नहीं हो गए। वो द्विंद्रिय से आगे मेरे ख्याल से वो तो पंचेंद्रिय अक्षर के ऊपर ही होते हैं। वो तो कितने अक्षरों का समूह, अभी उसको कितना ज्ञान है, वो अलग अलग वेरिएशन जाएंगे ना 15। ये तो सब गणधरों का तो 12 अंग पूर्व सब आ गए उसमें, पूरा पूरा संपूर्ण श्रुत ज्ञान। श्रुत केवल ही कहते ना उनको, श्रुत ज्ञान अलग बात है और अवधि ज्ञान अलग बात है। अवधि ज्ञान अलग टाइप का ज्ञान है, श्रुत ज्ञान में ये मैक्सिमम इतने भेद है। अवधि से उनकी महानता नहीं है, अवधि ज्ञान वो अलग टाइप का ज्ञान है। ख्याल है
आपका पूछना है कि क्या श्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान बड़ा है? अरे भाई साहब, अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल को जानता है, और श्रुत ज्ञान तो रूपी अरूपी सभी पदार्थों को जानता है।
स्व को जानने वाला कौन है? भाव श्रुत ज्ञान है ना।
ये ऐसे लोग आते थे अपने यहाँ अवधि ज्ञान के महात्म रखने वाले, उनसे मिल लेना।
देखो केवल ज्ञान की पूर्व अवस्था तो श्रुत ज्ञान का है, मति श्रुत ज्ञान से वो तो केवल ज्ञान होता है। प्रायर पर्याय जिसको कहते हैं ना, अनंतर पूर्व पर्याय। देखो हम अभी यहाँ अवधि ज्ञान की बात करेंगे। नहीं ऐसा अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा मत कीजिए उसको, उसका विषय अलग अलग है कि नहीं, वो अपने अपने स्पेशल। उसमें ज्ञान को आप कहो, अवधि ज्ञान वाला जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान वाला जो ज्ञान है, और केवल ज्ञान वाला जो ज्ञान है, उसमें क्या फर्क है? आप पर्याय को मत देखो, उसमें जो ज्ञान सामान्य है द्रव्यातिक नय से उसको देखो, और उसमें तो पूरा सामर्थ्य अंदर पड़ा हुआ है, रिजर्वायर तो पूरा ही शक्तिमान है और उसमें कितनी पर्याय प्रकट करते हैं उसकी महानता हमें आती है। उसका भले ज्ञान हो उसमें कोई बात नहीं है, हम प्रश्न भी उठते हैं उस संबंध में, परंतु हमें महानता उसी की आती है। अरे ये अच्छा के वो अच्छा, ये पर्याय रूप के अच्छा बुरा अपन छोड़ दो अभी, ख्याल है ना। केवल ज्ञान स्वरूप अपना स्वभाव है हर एक का, ये सब जानने की हमारी योग्यता अंदर पड़ी। अभी इतना जो हम जान रहे तो सुना इसलिए जाना कि पुस्तक में देखा इसलिए जाना, हाँ अभी तो इतना आता है ना, हमारी अपनी योग्यता से आता है, बिल्कुल आता है, ऐसी बात है। एक कारण तो यहाँ अंदर पड़ा है और उससे कार्य की उत्पत्ति होती जो ज्ञान पर्याय की, और हम मानते ये तो पर से आया ज्ञान। हाँ 2 मिनट और, देखो अवधि ज्ञान की हम परिभाषा देखेंगे फिर शंका समाधान कल करेंगे। जो नीचे की ओर प्रवृत्त हो उसे अवधि कहते हैं, वो नीचे की ओर क्या उसका पता नहीं चला। अधः पर्याय वचना, नीचे उसका कुछ लिखा है जो नीचे से तीसरी लाइन में है ना, आधी लाइन से, अवधि शब्दों अधः पर्याय वचना यानी अधक को सूच, अध यानी नीचे की ओर, यथा अधक्षेपणम अवक्षेपणम। अच्छा धी यानी बुद्धि, अधो यानी नीचे फेंकना, क्षेपण करना यानी गिराना है, हम कुछ फेंकते ना क्षेपण करते, अवक्षेपण यानी नीचे की ओर उक्षेपण करना, वैसे अवधि यानी नीचे की ओर प्रवृत्ति होने वाली बुद्धि, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है। इति अधोगत भूयो द्रव्य विषयो ही अवधि, अधोगत भूय द्रव्य अथवा अवधिर मर्यादा। अच्छा दूसरा भी अर्थ करते हैं, अवधि रूप जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है, अथवा अवधि नाम मर्यादा का है, यानी उसमें लिमिट आती है ना, उसके विषय जो जान रहा है उसमें मर्यादा है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र और काल, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विषय संबंधी मर्यादा के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। जो चीजें जानते हैं उसमें वो मर्यादा है, कौन कौन सी, द्रव्य संबंधी, यानी अभी अवधि ज्ञान क्या करता है, रूपी पदार्थों को जानता है, तो द्रव्य में क्या लेना, कितने परमाणुओं के स्कंध तक सूक्ष्म से सूक्ष्म जानता है, उसमें भी भेद अलग अलग हो गए ना, उसमें भी लिमिट है। जैसे हम आई चेकअप करने के लिए जाते हैं, आंखें दिखाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या हमको एक चार्ट बताते हैं, तो आप कहाँ तक पढ़ते हो, तो ऊपर की बड़ी पहली लाइन पढ़ ली, दूसरी लाइन पढ़ ली, तीसरी लाइन पढ़ ली, फिर वो छोटे छोटे अक्षर में उसमें फिर कन्फ्यूजन चालू होता, वो नहीं देख सकते। तो अपनी अवधि, अपनी मर्यादा कहाँ तक है, अभी मान लेते तीसरी लाइन तक, यानी वहाँ तक हम कम से कम देख सकते हैं, देखने की बात चली ना। वहाँ अवधि ज्ञान वाला कितने बड़े स्कंध तक, कितने परमाणुओं के स्कंध तक कम से कम जानता है, बड़े के बड़े स्कंध तो सब लोग जानेंगे उसकी बात नहीं है, उनकी मिनिमम कितने द्रव्यों का, कितने परमाणुओं के समूह तक जान सकते हैं स्कंध को, उसको उनकी वो द्रव्य की मर्यादा कहेंगे। क्षेत्र की मर्यादा में अभी उनके कितने एक मील के परिसर में जानेंगे कि 10 मील तक, ये जो है क्षेत्र। द्रव्य में तो जितने कम को जानेंगे वो अवधि ज्ञान बड़ा, जैसे हम जितने छोटे अक्षर देखेंगे हमारा आई साइट अच्छा है, परंतु क्षेत्र में उल्टा लेना, जितने लंबे तक के क्षेत्र में जो पुद्गल स्थित है उनको जानेंगे वो क्षेत्र की अपेक्षा उसकी मर्यादा है। फिर काल की अपेक्षा भूतकाल और भविष्य काल में 10 साल पहले से लेकर 10 साल आगे तक के किसी के इतनी लिमिट होगी, और कितनी पल्य तक की पीछे की और आगे की जानेंगे उतनी लिमिट होगी, तो इसको कहते हैं वो काल की अपेक्षा अवधि। फिर भाव की अपेक्षा, अब उसके जो भाव है, पुद्गलों के जो गुण हैं उसके भाव कहलाते ना, उस संबंधी में जो कुछ है, यह जीवों के भाव की बात नहीं है, क्योंकि जीव ये विषय ही नहीं है अवधि ज्ञान का, रूपी पदार्थ है उसके विषय हैं, तो उसके संबंध में मर्यादा से जो कुछ जानना होता है उसको कहते हैं अवधि ज्ञान, ये मर्यादा कहलाती है। जितना अधिक क्षेत्र तक जानते हैं वो अवधिज्ञान पावरफुल, जितने अधिक काल आगे पीछे का जानते हैं वो अवधिज्ञान पावरफुल, जितने सूक्ष्म परमाणु तक जानते हैं वो पावरफुल। जैसे सर्वोत्कृष्ट अवधिज्ञान है उसका नाम क्या है मालूम है? सर्वावधि। परमावधि तो उससे स्थूल है, सर्वावधि सबसे पावरफुल, तो वो एक परमाणु तक को जानता है, वो सर्वावधि है। और क्षेत्र कितना जानता है? असंख्यात लोक प्रमाण। तो क्या रूपी पदार्थ असंख्यात लोक में है कि एक लोक में ही है? एक लोक में। तो हाँ, शक्ति इतनी है कि असंख्यात लोक प्रमाण डिस्टेंस होता तो भी वो जान लेते। अभी वहाँ है नहीं कोई रूपी तो क्या करेंगे, मगर शक्ति है उतनी। चलो अभी हम यहाँ रुकते हैं, कल विशेष बात करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। विनोद भाई।